हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम लेक्चर 13। परम सौभाग्य है कि हम चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु जो आनंद वहाँ के जीवों को दे रहे हैं उनके विषय में अध्ययन करके हम उस समस्त आनंद को महसूस कर रहे हैं। बहुत आनंद आता है चैतन्य महाप्रभु के विषय में। केवल नाम जब मुख से लेते हैं ना महाप्रभु का, तो हृदय आह्लाद से भर जाता है, क्योंकि चैतन्य नाम से ही ऐसे श्रवण करके ऐसा लगता है कि बस हो गई गति, प्राप्त हो गया कृष्ण प्रेम। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराना है सब जीवों को। तो यदि हम प्रेम और श्रद्धा से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे हृदय में कृष्ण का जो प्रेम है वो छलछला कर। इसीलिए देखो श्री प्रभुपाद ने क्या किया कि भगवान की लीलाएं श्रवण कराने से पहले हमें महाप्रभु के विषय में बताया, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी जानते थे कि हम योग्य नहीं है भगवान की लीलाओं को श्रवण करने को, ग्रहण करने को, उनको समझने के लिए हमारे अंदर योग्यता नहीं है। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु कृपा का आस्वादन करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी ने भागवत स्टार्ट करने से पहले महाप्रभु की लीलाओं के विषय में मैं संक्षिप्त में बताया। वास्तव में भक्तों ये श्री प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। एक वैष्णव भक्त जानते हैं, एक शुद्ध वैष्णव जो प्रमाणिक गुरु है वो जानते हैं कि हम जैसे पतित जीव जो है वो डायरेक्ट से भगवान की कृपा तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक गौरंग महाप्रभु हम पर कृपा ना करें। और इसीलिए गौरंग महाप्रभु की परम पवित्र लीलाएं हमें सुनने का सौभाग्य प्रदान किया है श्री प्रभुपाद जी ने। श्री प्रभुपाद की जय हो। तो हम इन अद्भुत लीलाओं को श्रवण करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं धराति स्व परान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृजातं सहकणरघुनाथं वितन्तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्य नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कल हमने चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रकाश आनंद सरस्वती जो कि मायावादी सन्यासी थे उनके साथ जो डिबेट की और उसमें जिस तरह से उनके मायावाद फलसफे को चैतन्य महाप्रभु ने खंडन किया उसके विषय में पढ़ा। चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया था कल मायावाद। अच्छा, वहाँ पर क्या हुआ था, जब हम मायावाद के विषय में बात कर रहे थे तो थोड़ा सा साउंडलेस हो गया था ऑडियो, उसको हम वापस से थोड़ा इस चर्चा को बढ़ाएंगे कि मायावाद आखिर होता क्या है। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु ने कल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया, यदि आप वापस से देखना चाहो तो पेज नंबर 37 में देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सुंदर तरीके से मायावादियों के विषय में बताया है। पेज नंबर 37 में सेकंड पैरा में देखिए, महाप्रभु ने हंसते हुए, एक भक्त ने जब चैतन्य महाप्रभु को बताया था ना कि मैंने जब उसके सामने प्रकाशानंद सरस्वती जी के सामने चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया तो उन्होंने आलोचना की, लेकिन चैतन्य नाम को काफी टाइम उन्होंने अपने मुख से बोला, चैतन्य के नाम को उच्चारण किया, लेकिन एक बार भी भगवान कृष्ण के नाम को नहीं लिया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो महाप्रभु ने उसे हंसते हुए बताया कि मायावादी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मायावादी क्यों नहीं कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये मायावादी कृष्ण के चरण कमलों के अपराधी हैं, भले ही ये सदैव ब्रह्म आत्मा या चैतन्य आदि नामों का उच्चारण करें, इस प्रकार अपराधी होने के कारण वास्तव में कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं कर सकते। क्या अपराध क्या होता है उनका, अब क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि मायावादी इतने अपराधी होते हैं कि वो उनको ये बात ही मतलब भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करने का मन में आता ही नहीं है, वो भगवान का पवित्र नाम उच्चारण कर ही नहीं सकते। क्यों, कौन सा अपराध करते हैं वो श्री प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बता रहे हैं, कृष्ण का नाम तथा भगवान अभिन्न है। जैसे इस संसार में क्या होता है, हर एक चीज का अस्तित्व उसके नाम से भिन्न होता है, यानी कि वो टेस्ट उसके नाम में नहीं होता है जो उसकी चीज में होता है। जैसे कोई भी चीज, जैसे श्री प्रभुपाद जी अक्सर पानी का उदाहरण देते हैं, हम किसी फ्रूट का भी अगर नाम लेते हैं तो कहीं हम उससे तृप्त तो नहीं हो जाते, लेकिन भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। अब परम लोक में परम सत्य में नाम रूप व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, ये अपराध करते हैं वो। वास्तव में क्या होता है, भगवान का जो दिव्य शरीर है ना, जो संसार में जब भगवान द्वापर युग में आते हैं तो भगवान का शरीर हमारी तरह हाड़ मांस का बना हुआ नहीं होता है, लेकिन मायावादी क्या कहते हैं, भगवान का जो ये शरीर है, जब संसार में भगवान आते हैं तो वो माया का बना हुआ है, यानी जिस तरह हमारा शरीर होता है ना माया का, या फिर पंचभूत का बना हुआ होता है, इसको भगवान के भी रूप को वो मायावादी जो है ना वो माया। वास्तव में भक्त क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो पूरे के पूरे आध्यात्मिक है। ऐसा नहीं है, जिस तरह हमारे हृदय में एक छोटा सा अंश आत्मा है ना, वो उसके विषय में हम पढ़ते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, वो आत्मा जो के न जायते मिलियते वा कदाचन, ये सारी हमारी सिर्फ हृदय के अंदर जो छोटी सी आत्मा होती है ना, बाल अग्रे शत भागस, वो छोटा सा 10,000वां हिस्सा बाल की नोक का, वही आत्मा है। बाकी सारा का सारा क्या है, मेटेरियल है, बाकी सारा का सारा ये भौतिक शरीर है। लेकिन भगवान के हृदय में आत्मा नहीं है, भगवान पूरे के पूरे आत्मा से बने हुए, पूरा का पूरा सच्चिदानंद विग्रह उनका स्वरूप है, नख से लेकर सिर तक भगवान पूरे के पूरे आत्मा है। जैसे पूरा का पूरा है ना, राधा गोविंद महाराज बताते हैं, जैसे मिश्री का इंसान हो, पूरा मिश्री का एक बना दिया जाए जीव, और वो जिधर से भी आप देखोगे वो पूरा का पूरा मीठा होगा, उस तरह भगवान जो है वो सारे के सारे आध्यात्म है। ऐसा नहीं कि उनका शरीर हमारी तरह भौतिक है, लेकिन मायावादी लोग भगवान के शरीर को माया का बना हुआ कहते हैं, और वो क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। मायावादी बेसिकली वो होते जो माया, जिनको माया ने इस हद तक अपने शिकंजे में जकड़ रखा होता है कि वो वेद तो अध्ययन करते हैं पर भगवान के स्वरूप को भी साधारण मानते हैं। वे कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उनकी नजर में ये सारा संसार, उसमें जो कुछ भी आता है, इवन भगवान भी आते हैं, वो भी मिथ्या, लेकिन ये मिथ्या नहीं है, ये संसार शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, अनित्यम असुखम, ये अनित्य है, शाश्वत नहीं है, अशाश्वतम, लेकिन ये शाश्वत नहीं लेकिन मिथ्या तो नहीं है ना, इसमें जो कार्य करेंगे वो हमें भुगतने तो पड़ेंगे, कर्मों का फल देना पड़ेगा, लेकिन वो कहते हैं बस सब कुछ मिथ्या। उनकी नजर में मुक्ति की धारणा है कि मुक्त होने के बाद हम भगवान बन जाएंगे, बस ये उनकी धारणा है। परंतु महाप्रभु ने इस मायावाद का खंडन किया और बताया कि रियल मुक्ति क्या होती है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता। वास्तव में ये जो मायावादी फलसफा था ना, वो शंकराचार्य जी ने, आदि शंकर जी ने स्टार्ट किया था, क्योंकि इसको स्टार्ट करने का क्या, क्योंकि आदि शंकराचार्य जो थे वो शिव जी के अवतार थे। अब इससे पहले क्या हुआ था, जब बौद्ध धर्म के आने से सब लोग ने वेद को अस्वीकार किया था। अब वेद बौद्ध धर्म में क्या हुआ था कि सारे वेद गलत है, बस वेदों को मानना छोड़ दो, और उन्होंने अपना एक अलग से पूरा ना एक रिलीजन बौद्ध धर्म का कायम कर दिया था। लेकिन जब भगवान ने देखा कि आप संसार में वेद को नहीं माना जा रहा है, तो भगवान ने शिव जी को यह आदेश दिया कि आप संसार में जाओ और मायावाद का प्रचार करो, जिससे बौद्ध धर्म का खंडन हो जाएगा। फिर मायावाद उन्होंने वेद को पढ़ के मायावाद का, क्योंकि वेद में तो बहुत सारी अलंकार मई लैंग्वेज है, तो उन्होंने वेद को पढ़ के, वेद को मान के भी मायावाद का कि भगवान जो है वो सिर्फ वो नहीं है, मतलब उसका कोई शरीर नहीं होता है, वो संसार में आते हैं तो भी माया, मतलब भगवान को खंडन किया, वेद को माना और वेद का बहुत बहुत प्रचार किया। और भगवान ने उनको आदेश भी यही दिया था कि आप संसार में जाओ मायावाद का प्रचार करो, जिससे वेद ये बौद्ध धर्म का खंडन हो जाएगा, क्योंकि फिर लोग वेद को मानने लगेंगे, और सब लोग वेदों को मानेंगे तो उसके बाद भगवान ने कहा मैं स्वयं, फिर भगवान स्वयं महाप्रभु का अवतार लेकर मायावाद का खंडन किया, जो मायावाद शंकर आदि शंकराचार्य ने बनाया था, उनकी फिलॉसफी को चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व, जो उन्होंने अचिंत्य भेदाभेद फलसफा बताया कि भगवान जो है वो वहां भी नित्य है, यहाँ भी नित्य है, भगवान हर समय भगवान जो है वो माया से परे है, इस संसार में आए या फिर अपने गोलोक वृंदावन धाम में जाए, भगवान से रिलेटेड हर वस्तु दिव्य आनंदमय होती है, भगवान कृष्ण के लिए शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रकार वे उस जीव से भिन्न है जो अपने बाह्य शरीर से सदा भिन्न होता है, यानी कि साधारण नहीं है। कृष्ण की दिव्य स्थिति के कारण सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण, उनके नाम तथा यश को वास्तविक रूप में जानना बहुत कठिन है। उनके नाम, यश, रूप, लीलाएं, ये सभी एक ही दिव्य स्वरूप है, और उन्हें भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही सुंदर रीति से समस्त मायावाद का खंडन किया और फिर प्रकाशानंद सरस्वती को बताया कि क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने कहा कि तुम तो मूर्ख हो, वेदांत समझोगे नहीं, तो वेदांत का सार क्या है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, तुम वही करो और वही सिखाओ सबको। इसीलिए मैं वेदांत से ज्यादा भगवान के पवित्र नाम को ही समझता हूँ और उसी का गान करता हूँ और उससे मुझे इतना आनंद आता है। और चैतन्य महाप्रभु के अंदर उत्पन्न हुआ, हम लोगों ने ना रूप सनातन गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु की जो चर्चा हुई उसके विषय में संक्षिप्त में पढ़ा। और चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए और वहां पर बहुत सारे महत्वपूर्ण स्थानों घाटों में उन्होंने यात्रा की, स्नान किया, उनके विषय में पढ़ा और बहुत सारे वनों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए और वहां के पशु पक्षी जब चैतन्य महाप्रभु से को देखा तो उनके प्रेम में उनको आलिंगन करने लगे और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम का संकीर्तन करते रहे। वृंदावन के वन के भीतर की यात्रा के समय उनके शरीर में बहुत ही विलक्षण लक्षण दृष्टिगोचर हुए। श्री प्रभुपाद जी ने कहा उनका वर्णन करना हमारे लिए असंभव नहीं है, हम तो केवल ये बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ था, लेकिन वास्तव में क्या हुआ था वो ना साधारण व्यक्ति बोल सकता है ना ही हम लिख सकते हैं। आगे से हम पढ़ रहे हैं कि महाप्रभु ने वृंदावन के जिन महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन किया वे थे काम्यवन, आदिश्वर, पावन सरोवर, खदीरवन, शेष्यवन, खेलतीर्थ, भांडीरवन, भद्रवन, श्रीवन, लौहवन, महावन, गोकुल, काल्यरुद्ध, द्वादशादित्य। ध्यान से ना, 12 ये पता है कौन सी है? जब कृष्ण ने काली नाग को मारा था ना, तो इतनी देर तक वो समुद्र में, उसमें यमुना नदी में थे, तो जब बाहर निकले तो सर्दी लग रही थी ना कृष्ण को, फिर 12 आदित्यों को, 12 सूर्यों को है ना महारानी ने बोला था कि आप जल्दी आओ, भगवान के शरीर पे गर्मी उनको पहुंचाओ क्योंकि उनको सर्दी लग रही है, कितनी देर से वो यमुना में थे। तो वहां पर आए थे सारे आदित्य और फिर भगवान के शरीर को गर्मी, हरे जो वन है जितने भी हैं उनकी अलग अलग कहानी, उनकी अलग अलग ना लीला है। जब हम चलेंगे ना वृंदावन में सब मिलके तो हर एक चीज को बहुत ही आस्वादन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि एक एक चीज, एक एक वन, एक एक वृक्ष के विषय में हमें पता चले कि उस वृक्ष के साथ भगवान का क्या संबंध है, उस स्थान के साथ भगवान की कौन सी लीला जुड़ी हुई है। तो अगर भगवान की कृपा होगी तो हम ये सब जान सकेंगे। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, जब उन्होंने उस स्थान को देखा जहाँ रास हुआ था तो वे तुरंत समाधि में पहुँच कर गिर पड़े। जब तक वे वृंदावन में रहे उन्होंने अक्रूर घाट को अपना निवास स्थान बना है। जब चैतन्य महाप्रभु ने रास स्थान, रास लीला के स्थान को देखा तो फिर वो समाधि में चले गए। वो उनको याद आ रहा था कि ये वही स्थान है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु श्रीमती जी और भगवान श्री कृष्ण का मिलित अवतार हैं और श्रीमती राधा रानी ने जब इस जगह को देखा होगा तो उनके ऊपर कैसा भाव आ रहा होगा वो तो वर्णनीय है नहीं। और जब तक महाप्रभु वृंदावन में रहे तो अक्रूर घाट में ही उन्होंने निवास स्थान बनाया था। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जिनकी उनके निजी सेवक कृष्णदास विप्र उन्हें वृंदावन से माघ मेला के अवसर पर स्नान करने के लिए प्रयाग ले जाना चाहते थे। महाप्रभु ने यह प्रस्ताव मान लिया और वे प्रयाग के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें कुछ पठान मिले जिनमें से एक विद्वान मौलाना था। महाप्रभु की इस मौलाना तथा उसके साथियों से कुछ बातें हुई। महाप्रभु की इस मौलाना तथा उसके साथियों से कुछ बातें हुई तो उन्होंने मौलाना को विश्वास दिलाया कि कुरान में भी भागवत धर्म तथा कृष्ण का वर्णन है। फलतः सारे पठान उनके भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु कन्विंस कर देते थे ना, उन्होंने बताया कि कुरान में भी यही भागवत धर्म है, तो सारे जो पठान थे वो भक्ति संप्रदाय में दीक्षित हो गए। जब ये प्रयाग आ गए तो श्री प्रभु अभी चैतन्य महाप्रभु के साथ भेंट हो जाए और उनका कल्याण ना हो, तो ये तो संभव नहीं है ना। चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान और कृपा देने के लिए आए हैं, और उनको सिर्फ देख लेना ही काफी था कृष्ण को। और मनुष्य जीव मात्र की सिद्धि यही है, सर्व सिद्धि क्या है कि वो भगवान का भक्त बने, और महाप्रभु आए थे सबको भक्त बनाने के लिए। तो जो जो उनसे मिलता जाता था, जो जो चाहे वो कोई भी होता था, तो उनको चैतन्य महाप्रभु भगवान की भक्ति प्रदान करते थे। और जब वे प्रयाग आ गए तो श्री रूप गोस्वामी तथा उनके सबसे छोटे भाई उनसे बिंदु माधव मंदिर के निकट मिले। इस बार प्रयाग में प्रयाग के वासियों ने महाप्रभु का पहले से अधिक आदरपूर्ण स्वागत किया। प्रयाग के उस पार स्थित आड़ेल ग्राम के वासी वल्लभ भट्ट अपने ग्राम में उनका स्वागत करने वाले थे, लेकिन वहां जाते समय महाप्रभु यमुना नदी में कूद पड़े। अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की एक अद्भुत लीला है कि जब वो जा रहे थे प्रयाग में वल्लभ भट्ट के घर पे, तो रास्ते में यमुना नदी जब आई तो उसमें कूद पड़े। बड़ी ही कठिनाई से उन्हें मूर्छित अवस्था में पकड़ कर बचाया गया। अंत में वे वल्लभ भट्ट के स्थान पर गए। वे महाप्रभु के मुख्य प्रशंसकों में से थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना दल बना लिया जिसका नाम वल्लभ संप्रदाय था। फिर वो वल्लभ संप्रदाय का अलग संप्रदाय बन गए। अभी भी वृंदावन में वल्लभ संप्रदाय, जो राधा वल्लभ लोग है ना, वो वल्लभ संप्रदाय अलग है। अभी जब वो चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे जा रहे थे, जब यमुना देखी तो उनको फिर से चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्रीमती राधा रानी का भाव आवेश आ गया, और उनको वही भगवान से अपना द्वापर युग में जो उनका ना यमुना जी से, क्योंकि इतना प्रेम से राधा रानी और कृष्ण की लीलाएं यमुना नदी पर होती थी, तो उसको याद आ गया। और चैतन्य महाप्रभु बहुत मुश्किल से वहां से उनको निकाला गया। उसके बाद प्रयाग में एक घाट है जिसका नाम है दशाश्वमेघ। वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को लगातार 10 दिनों तक भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया। उन्होंने गोस्वामी को प्राणियों की 84 लाख योनियों के विभागों की शिक्षा दी। फिर उन्होंने अब चैतन्य महाप्रभु ने ही ये सारी जो योनियों के विषय में बताया है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, जलजानव लक्षणी स्थावर लक्ष्य विशंति क्रिमिया रुद्र संख्या का 30 लक्षणी पक्षों 10 लक्षणी पक्षिणाम और चतुर लक्षणी मानवा, ये सब के विषय में चैतन्य महाप्रभु ने बड़े डिटेल से सनातन गोस्वामी को बताया। फिर उन्होंने मनुष्य योनि का पाठ पढ़ाया। फिर बताया कि इतने इतने बहुत सारे जल के प्राणी, उड़ने वाले प्राणी, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े बनने के बाद कभी जाकर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उन्होंने मनुष्य में से वैदिक सिद्धांतों के अनुयायियों के विषय में बताया। और फिर बहुत ही कम ऐसे होते हैं, अब कितने सारे मनुष्य हैं उसमें से बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। फिर उनमें से सकाम कर्मी वैदिक सिद्धांत को पालन करते हैं, उससे आगे सकाम कर्मी, फिर उनमें से भी ज्ञानियों तथा ज्ञानियों में से मुक्त आत्माओं के विषय में बताया। और बताया कि बहुत उनमें से भी बहुत कम तो खाली ज्ञान कोरा ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, और ज्ञानियों में से मुक्त आत्माएं जो कि भगवान को अपना लक्ष्य मानती हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति स्वीकार करती हैं, उनके विषय में बताया। उन्होंने बताया कि कुछ ही ऐसे लोग हैं जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं। यानी कि सारा जो क्रम से बताया कि देखो बहुत सारी इतनी सारी योनियां प्राप्त करने के बाद किसी को मनुष्य जीवन मिलता है, मनुष्य जीवन में भी कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो वेदों के सिद्धांतों को समझते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो सकाम कर्मों में फंस कर स्वर्ग इत्यादि को ही अपना सब कुछ मानते हैं, फिर कुछ उनमें से ज्ञानी बन जाते हैं और खुद जो है ना वो मायावाद में जाकर खुद को भगवान समझ बैठते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं। इससे देखो ये जो भगवान कृष्ण की भक्ति है ना, वो बहुत ही दुर्लभ है, ये बहुत ही दुर्लभ है। जो कि कोई जीव जो है वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाए। अब देखो संसार में अगर देखा जाए तो कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से कृष्ण भक्त को अगर हम लोग संख्या में देखें, ऐसे बोलते हैं ना कितना परसेंट कृष्ण भक्त है, तो कितने थोड़े से हमें मिलेंगे कि भाई इतने परसेंट जो है वो कृष्ण के भक्त हैं। तो ये बहुत ही साधारण जीव नहीं होते, इन्होंने बहुत बहुत तपस्या की होती, वो चाहे किसी भी तरह से कृष्ण के भक्त हैं, यानी कि वो छोटे से छोटा भक्त है, अगर वो महामंत्र का जप करता है ये मानता है कि कृष्ण भगवान है, तो हमें उनका आदर करना चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। वो उन्होंने बहुत तपस्या के बाद ये स्टेज प्राप्त की है, तो हमें उनका आदर करना चाहिए। अब ये और बात है कि वो कितना विकसित हुआ है उस कृष्ण भक्ति में, उसको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितनी श्रद्धा है, वो अलग है। एटलीस्ट वो यहाँ तक तो पहुंचा है कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण को प्रेम करना है जीवन का लक्ष्य, यहाँ तक तो वो पहुंचा है, तो वो आदरणीय है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें सदैव वैष्णवों का आदर करना चाहिए, अपने में अमानी न मान देना, कि दूसरों को सबको आदर देना चाहिए, मान देना चाहिए, और अपने को बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं तो इतना प्रेम कर, और वाकई में हमारे हृदय में प्रेम है भी नहीं, तो फिर हमें उन सबका आदर करना चाहिए जो कृष्ण को भगवान मानते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो हृदय में जो ये ऐसा हम जब थोड़ी भक्ति करना सीख जाते हैं ना, तो हमारे अंदर थोड़ा सा अहंकार हो जाता है कि मैं तो सबको जान रहा हूँ, ये तो देखो पागलों की तरह भक्ति करते हैं, कुछ शास्त्र भी इनको नहीं आता है, कुछ भक्ति भी नहीं करनी। ऐसा नहीं, हमें जो है ना वो इस स्टेज से ऊपर, आलोचना के स्टेज से ऊपर आना पड़ेगा, तभी हम भक्ति में बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे। आलोचना क्या कि वो सही नहीं कर रहा है, आपको ये नहीं देखना कि वो कैसे कर रहा है, हमें क्या देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ है, जिसको प्राप्त हुई है वो कोई साधारण जीव नहीं हो सकता, वो आदरणीय है, उनका हमें आदर करना चाहिए। और इसलिए श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वास्तव में बहुत ही कम लोग होते हैं जो कृष्ण के शुद्ध भक्त हो सकते हैं। श्री रूप प्रभु गोस्वामी सनातन गोस्वामी के छोटे भाई थे, जब वे सेवा से मुक्त हुए तो अपने साथ दो नाव भरकर सोने के सिक्के लाए थे, अर्थात वे अपनी नौकरी से संचित की कई लाख रुपए लाए थे। उन्होंने ग्रह त्याग कर भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के पूर्व अपनी संपत्ति इस प्रकार बांटी। आपको जैसे मैंने बताया, श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो थे वो बहुत बड़े राजा के मंत्री थे, तो उनको बहुत ज्यादा सैलरी मिलती थी ना। अब दो नाव भरकर उनके पास सोने के सिक्के थे, अब क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के पास आ रहे थे, और एक भक्त को ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब वो भक्ति करने जाता है तो फिर ये सांसारिक सारी मोह माया को उसे त्यागना पड़ता है। तो फिर उन्होंने इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, 50% भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में, 50% सारा का सारा भगवान और उसके भक्त होंगे। कितने सारे सोने के सिक्के होंगे और बड़े बड़े मंदिर बने उसकी वजह से, और वो सब तो भगवान और भक्तों की सेवा में दिए, और 25% संबंधियों में तथा जितने भी उनके रिलेटिव थे ना, 25% 25% उनको दिए, और 25% आपातकालीन निजी आवश्यकता के लिए रखा, कि जब बाद में हमें आवश्यकता पड़ेगी तो, क्योंकि इनको बहुत सारे शास्त्र लिखने थे, बहुत सारे शास्त्रों का निर्माण करना था, बहुत सारी तीर्थ स्थलों की खोज करनी थी, तो उसके लिए धन की आवश्यकता होगी ना, कहीं कहीं जाना था प्रचार करने के लिए। तो फिर उन्होंने 25% यानी कि 25% उस अपने आपातकालीन निजी आवश्यकता के लिए रखा। महाप्रभु ने गोस्वामी को भक्ति के विषय में शिक्षा देते समय भक्त की तुलना एक लता से की, और उपदेश दिया कि तुम उस भक्ति लता को शुद्ध भक्तों के प्रति किए गए अपराध रूपी मत्त हाथी से बचाना। बहुत ही सुंदर ये चैतन्य महाप्रभु का अत्यंत ही सुंदर उपदेश है कि जो आपके हृदय में कृष्ण की भक्ति है ना, वो एक बहुत ही कोमल लता है। लता का मतलब होता है बहुत ही कोमल डाली है, और ये डाली जो है वो तब तक ही सुरक्षित रह सकती है जब हम भक्तों के प्रति कोई अपराध नहीं करेंगे। जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके अपराध को, उनके बारे में किए गए अपराध को उनको किसी तरह से भी यदि हम कष्ट पहुंचाते हैं, उनको खाली रुष्ट भी कर देते हैं, तो विष्णु प्रभुपाद जी के चैतन्य महाप्रभु बता रहे मत्त हाथी से बचना, कि ये बहुत खतरनाक हाथी है जो आपकी भक्ति लता को तहस नहस कर देगा। तो हम क्यों करें वैसे, है ना। भक्त जो है वो अपनी मर्जी से अपनी भक्ति कर रहे हैं, हमें तो क्या देखना है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे भगवान के प्रेम को ज्यादा से ज्यादा विकसित कर सकूं। और यदि हम दूसरों के अपराधों को देखते रहेंगे, दूसरों को ही हम उल्टे सीधे शब्द कहते रहेंगे या उनके विषय में बोलते रहेंगे या उनको किसी तरह से कष्ट पहुंचाते रहेंगे, तो फिर अगर ये हाथी नहीं भी होता तो हमारी उन्नति कैसे होती है। लेकिन यहाँ पर तो ये है, चैतन्य महाप्रभु ने तो साफ साफ कह दिया कि शुद्ध भक्तों के प्रति किए गए अपराध रूपी मत्त हाथी है ये, तो आपकी भक्ति लता को तहस नहस कर देगा। तो भक्तों को बहुत सावधान रहना है, भक्तों के विषय में कोई ऐसी बात कि उनको किसी तरह से भी दुख पहुंचे तो हमें नहीं करनी चाहिए। जो साधारण छोटे छोटे भक्त है ना, उनको भी कभी दुख नहीं देगा, उनकी मर्जी है वो कैसे कर रहे हैं। अगर वो आपसे पूछते हैं, जैसे कुछ अलग बात होती है ना, जैसे इस तरह कि आपसे पूछते हैं कि भाई हमें कैसा करना चाहिए, ये हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो आप बताओ। नहीं पूछ रहे हैं तो गुरु और सीनियर डिवोटी बैठे हुए हैं, वो उनको बताएंगे, हमें तो अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना है। तो उन सबको प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, कृष्णे दियस्य गिरितम मनसाद्रीत। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्णे दियस्य गिरितम, जिसने अपने मुखारविंद से एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है, मनसाद्रीत, उसका आदर करो, उसका सम्मान करो। अब वो कैसा है बाद में वो नहीं देखो, उसने भगवान का नाम ले लिया, अब वो सम्माननीय है, उसका आदर करना चाहिए। आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इसके अतिरिक्त इंद्रिय भोग की इच्छाओं से, अद्वैतवादी मुक्ति से तथा हठ योग प्रणाली की सिद्धि से भी इस लता की रक्षा करनी चाहिए। और एक तो भक्तों की आलोचना करने से, भक्तों का अपराध करने से, और इंद्रिय भोग की इच्छा से भी। कुछ लोग इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, फिर उनकी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी ना उसमें। और अद्वैतवादी मुक्ति से, यानी कि अद्वैतवादी मुक्ति क्या है कि मैं और भगवान एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि, तो उसमें भी है ना अद्वैत, यानी दूसरा कोई नहीं है, मैं और भगवान एक ही है, तो उससे और दूसरे भी हठ योग की प्रणाली की सिद्धियां वगैरह, उनसे अपनी भक्ति की रक्षा करनी चाहिए। ये सब भक्ति पथ के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार जीवों के प्रति हिंसा, सांसारिक लाभ की इच्छा, सांसारिक सम्मान तथा सांसारिक यश भी भक्ति या भागवत धर्म की उन्नति में बाधक बनता है। अब सबसे पहले जीवों के प्रति हिंसा, खाली भक्त ने अभी जीव बताया चैतन्य महाप्रभु ने थे कि जीव माना मनुष्य तो छोड़ो, जो हम जब भक्त बनते ना, भक्ति पथ पर आगे बनते, तो जो जीव मात्र होते ना, कीड़े मकोड़े, जो कोई भी पशु पक्षी होते, उन पर भी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनको भी कभी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। और सांसारिक लाभ की इच्छा कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, सांसारिक सम्मान यश की प्राप्ति और सांसारिक, ये सब चीजें भगवत धर्म में उन्नति में बाधक है। हमें इन सबको छोड़ना पड़ेगा यदि हम सीरियस हैं और भक्ति में आगे बढ़ना चाहते। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि एक भक्त को इन सारी चीजों से बचना चाहिए, और शुद्ध भक्त को इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं, सकाम महत्वाकांक्षाओं तथा अद्वैतवादी ज्ञान की संस्कृति से मुक्त होना चाहिए। शुद्ध भक्त के लिए सबसे पहले तो इंद्रिय भोग की इच्छाएं, क्योंकि ये जो काम वासना है ना, वो हमें और भी नीचे गिराती जाएंगी। जैसे जैसे हम इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते रहेंगे ना, तो भक्ति में हम लोग नीचे चले जाते हैं। सकाम महत्वाकांक्षाओं कि ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, और दूसरा अद्वैत ज्ञान की संस्कृति कि अद्वैत ज्ञान में और भगवान, ये जो भगवान में मिलकर एक होना, या इस तरह मनुष्य को सारी उपाधियों से मुक्त होना चाहिए। और अब वह दिव्य शुद्धता को प्राप्त कर लेता है तो वह शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कर सकता है। अब उपाधियां क्या है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा था ना, ना हम विप्र न च नरपति, न वैश्यो न शूद्रो, न हम वर्णी न च गृहपति, न वानस्थो यतुर्वा, किंतु प्रौधान निखलः पूर्णामृतस्तब्धेः गोपी भरतापद कमल दास दास दासान दास, हमें इन सबसे ऊपर उठना है। हम ये हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, हम वैश्य हैं, शूद्र हैं, हम ये हर चीज में हम असल में क्या है, चाहे जो भी है, दास दास दासान दास, गोपी भरता पदकम, जो गोपियों के भरता भगवान श्री कृष्ण है उनके चरणों के दासों के दासों के दासों का दास, ये हमारी रियल स्टेज है। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कहते हैं कि जब वह दिव्य शुद्धता, यानी कि अपने दास स्वरूप में अपने आप को समझ लेगा, वह दिव्य शुद्धता प्राप्त कर लेगा, तो शुद्ध इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा कर सकता है। जब तक इंद्रिय भोग की या परमेश्वर से एकाकार होने की योग शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छाएं रहती हैं, तब तक शुद्ध भक्त की अवस्था प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब ये तीन चीजें को हम लोगों को जान लेना है। एक तो नंबर वन पे इंद्रिय भोग की इच्छा, जब तक वो रहती है तो फिर भक्ति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि फिर भक्ति में तो हमें क्या करना पड़ता है, इंद्रिय संयम करना पड़ता है। और दूसरा परमेश्वर से एकाकार होने की इच्छा कि मैं भी भगवान बन जाऊं, फिर तो सेवा भाव रहेगा नहीं ना, हम दास भाव तो तब तक अपने अंदर क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे जब हमारे मन में यही ख्वाहिश होगी कि मुझे भी भगवान बनना है, एकाकार होना है। जब तक ये इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, तब तक शुद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त करना संभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोलते सवाल ही पैदा नहीं होता कि वैसा व्यक्ति जिसके हृदय में इंद्रिय भोग की इच्छा हो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भोग करेंगे, साथ साथ में मन में भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं जब तक इंद्रिय भोग की इच्छा तुम्हारे हृदय में रहेगी, और ये जो एकाकार होना है ना, वो भी इंद्रिय भोग की एक किस्म है। क्या है वो, यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं इंद्रिय भोग, लेकिन चाहते हैं कि मैं भगवान बन जाऊं और फिर इसी से मुझे संतुष्टि प्राप्त। एक तरह से इंद्रिय भोग ही हुआ ना, तो जब तक हृदय में कोई भी इंद्रिय भोग की कामना है, तब तक शुद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त करना उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति दो प्रकार से संपन्न की जाती है, प्राथमिक अभ्यास द्वारा तथा स्वैच्छिक भाव से। ये बहुत ही आगे का उच्चतर स्टेज है कि जब हम रागानुगा भक्ति में आते, जब कोई रागानुगा भाव की दशा को प्राप्त करता है, यानी कि पहले हमें वैदिक भक्ति करनी होती है स्टार्ट में गुरु और साधु के आदेश अनुसार, लेकिन जब प्रेम इतना विकसित हो जाता है और हमारी स्टेज रागानुगा भाव में आ जाती है, उसकी दशा को प्राप्त करता है, तो वह आध्यात्मिक आसक्ति अनुभूति प्रेम तथा भक्ति की अनेक उच्चतर अवस्थाओं द्वारा आगे भी प्रगति कर सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु ने जितने भी ज्ञान दिए उसकी पराकाष्ठा है, जो कि यहाँ पर संक्षिप्त में यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हमने भक्ति के विज्ञान को स्वरूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु के प्रमाण पर आधारित अपनी पुस्तक The Nectar of Devotion, भक्ति रथा अमृत सिंधु में ये सारी बातें इनकी, किस तरह से पहले वैदिक भक्ति होती है, उसके बाद रागानुगा भक्ति में भक्त प्रवेश करता है, इतनी सुंदर शास्त्र है। हम संडे को इसका अध्ययन करते हैं। कभी कृष्ण ने यदि अवसर प्राप्त कराया तो फिर हम यहाँ पर भी उसको करेंगे। बहुत ही सुंदर द नेक्टर ऑफ द डिवोशनल सर्विस भक्ति रथा अमृत सिंधु के विषय में हम पढ़ेंगे, और उसमें चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाएं जिस रूप गोस्वामी को उन्होंने दी थी उसको डिटेल से बताया है। दिव्य भक्ति की पांच अवस्थाएं स्तर या रसों के विषय में बताते हैं कि दिव्य भक्ति कैसे शांत दास सत्य और माधुर्य, इन सबके विषय में हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। हरे कृष्णा।